بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اس کتاب کا پارٹ نمبر 4 ہے. آج ہم کتاب مطالعہ پاکستان لازمی ریکارڈ کر رہے ہیں برائے BA BSc BCom جدید نصاب اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے مطابق. اس کتاب کے مصنف محمد نعیم طاہر PhD ریسرچ اسکالر ہیں. یہ کتاب آپ کی خدمت میں الصفہ آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. یہ پیج نمبر 44 ہے. آئیے سنتے ہیں پارٹ نمبر 4. جبکہ صدر محاسب ملک کے اکاؤنٹس یعنی حساب و کتاب کا ذمہ دار ہوتا تھا. نمبر 13 قومی زبانیں. بنگالی اور اردو کو پاکستان کی قومی زبانیں قرار دی گئیں، لیکن انگریزی زبان اس وقت تک دفتری زبان کے طور پر استعمال کی جائے گی جب تک اردو اور بنگالی اس کی جگہ نہ لے لیں. اس کے لیے 20 سال کی مدت مقرر کی گئی. 1956 کے آئین کی ناکامی کے اسباب. جب 1956 کا آئین نافذ ہوا تو ملک کے طول و عرض میں خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی. قوم 9 سالہ طویل جدوجہد اور کشمکش کے بعد اپنا آئین حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی تھی، لیکن خود غرض اور مفاد پرست عناصر نے اپنے مفاد کے لیے ملک میں سیاسی عدم استحکام کی فضا پیدا کی رکھی. درحقیقت وہ اس آئین کو صحیح معنوں میں نافذ کرنے میں مخلص نہ تھے. انہی کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے 1956 کا آئین منسوخ کر دیا گیا، جس نے ملک و ملت کو ایک بار پھر مایوسیوں اور تاریکیوں کے گڑھے میں دھکیل دیا. بہرحال یہ آئین ملک و قوم کے دستوری اور سیاسی مستقبل میں کوئی رنگ نہ بھر سکا، اور ظالم ہاتھوں نے اسے ایک بحیثیت چیز کی طرح اٹھا کر پھینک دیا. اس آئین کی ناکامی کی وجوہات کا اجمالی جائزہ حسب ذیل ہے. نمبر 1 طریقہ انتخابات. اگرچہ 23 مارچ 1956 سے دستور کو باقاعدہ نافذ کر دیا گیا تھا، مگر اس کا باقاعدہ نفاذ نئے انتخابات کے بعد ہی ہو سکتا تھا. اس دستور میں ایک بڑی خرابی یہ رہ گئی تھی کہ اس میں طریقہ انتخاب کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا تھا. اس وقت چونکہ ملک میں انتشار تھا، اس لیے اس آئین کے تحت صوبائی اور مرکزی قانون ساز اسمبلیوں کا انتخاب جلد عمل میں نہ آ سکا، اور اس طرح آئین کا باقاعدہ نفاذ نہ ہو سکا. پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی جداگانہ انتخابات کے اصول پر منتخب کی گئی تھی، مگر 1956 کے آئین میں طریقہ انتخاب کے مسئلے کا حل نہ کیا گیا. حالانکہ عوام جداگانہ انتخاب کے حق میں تھے، مسلم لیگ، جماعت اسلامی اور نظام اسلام پارٹی نے جداگانہ انتخاب کے حق میں پورے ملک کی رائے عامہ کو بیدار کیا تھا، مگر عوامی لیگ، نیشنل عوامی پارٹی اور برسر اقتدار ریپبلکن پارٹی ہندوؤں کی حمایت حاصل کرنے کی خاطر مخلوط انتخابات پر زور دے رہی تھی. خاصی بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں مخلوط اور مغربی پاکستان میں جداگانہ طریقہ انتخاب رائج کیا جائے. اسے بھی بعد میں بدل کر پورے ملک کے لیے مخلوط انتخاب کا طریقہ طے کر دیا گیا. اس طریقہ انتخاب کے جھگڑوں نے بھی 1956 کے آئین کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا. نمبر 2 قیادت کا فقدان. قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد ملت لیاقت علی خان کی سرپرستی سے محروم ہو جانے کے بعد ملک میں قیادت کا فقدان تھا. ملک کی باغ دوڑ مفاد پرست اور لادین عناصر کے ہاتھوں میں آ گئی، جو نہ صرف اسلام کے خیرخواہ تھے اور نہ ہی جمہوریت کے لیے ہی مخلص تھے. سیاسی انتشار کی وجہ سے عامرانہ رجحان کے مالک افراد ابھر کر سامنے آئے اور انہوں نے وسیع اختیارات حاصل کر لیے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ ملک کی گاڑی جمہوریت کی راہ پر گامزن ہو اور ملک میں آئینی حکومت کا نفاذ ہو. اس چیز نے ہی دستور کی ناکامی کو ناگزیر بنا دیا. نمبر 3 سیاسی جماعتوں کا مضموم کردار. قیام پاکستان کے بعد ملک کی اکثر و بیشتر سیاسی جماعتیں صوبائیت کا شکار ہو گئیں، اور انہوں نے قومی نقطہ نظر سے کوئی قابل ذکر کارنامہ سر انجام نہ دیا. مزید برآں مسلم لیگ کی کوک سے متعدد سیاسی گروہ ابھر آئے، جنہوں نے بعد میں سیاسی جماعتوں کی شکل اختیار کر لی. یہ محض اقتدار پرست افراد پر مشتمل گروپ تھے، جو اقتدار کے رخصت ہونے پر اسی طرح ختم ہو جاتے تھے جس طرح پانی کی سطح پر بلبلے پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن سیاسی جوڑ توڑ، محلاتی سازشوں और पार्टियां बदलने की आम वबा से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा ना हो सका, और सियासी जमातों ने अपने मजमूम किरदार की वजह से 1956 के आईन को नाकाम बनाकर रख दिया। वरना अगर मुल्क में मजबूत सियासी जमातें होती तो वो दस्तूर की मशीनरी को कामयाबी से चलाने का फरीजा बड़ी उम्दगी से अदा कर सकती थी। नंबर 4, सियासी तरबियत की कमी। किसी मुल्क में जमहूरियत ज्यादातर सियासी जमातों और सियासी इदारों की कारकर्दगी की बिना ही पर कामयाबी से हमकिनार हो सकती है। दरअसल सियासी जमातें ही अवाम की सियासी तरबियत करती हैं और वही अवाम के जज्बात और एहसास की सही तर्जुमानी करती हैं। मगर जिस मुल्क में सियासी जमातें ही इंतशार का शिकार हों, वहाँ अवाम की सियासी तरबियत कैसे हो सकती है? एक तवील अरसे तक गुलामी के बाद कौम में सियासी शऊर बेदार न हो सका, इसलिए अवामुन्नास के अंदर बाज आमरियत पसंद लीडरों ने ये सोच पैदा कर दी कि इस मुल्क के लिए जमहूरियत के बजाय आमरियत ज्यादा सूदमंद है। यही वजह है कि 1956 के आईन के तनसीख, जिसे जमहूरियत कुश इकदाम पर अवाम की अक्सरियत ने मुख्तसर से बाशऊर तबके को छोड़कर किसी किस्म के गम गुस्से का इजहार नहीं किया। नंबर 5, मुआशी अदम इस्तेहकाम। 1956 के आईन से कबल मुफाद परस्त अनासिर ने मुल्क के माशी हालात को बुरी तरह मफलूज कर रखा था। इंतहाई जाबराना मुआशी निज़ाम की बदौलत लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे। अमीरी और गरीबी के दरमियान ना खत्म होने वाले फासले हाइल हो गए थे। इसी दौरान में मुल्क अनाज की किल्लत का शिकार भी हो चुका था। लोग उन तमाम हालात की जिम्मेदारी हुक्मरानों पर डालने के बजाय जमहूरी निज़ाम पर डाल रहे थे, जिसका दूसरा मतलब ये था कि मुल्की फजा दस्तूर के पनपने के लिए बिल्कुल गैर साजगार हो गई थी। नंबर 6, जमहूरी रिवायात का फुकदान। पाकिस्तान में नाफिज होने वाले आईन की नाकामी की वजह जमहूरी रिवायात और इदारों का फुकदान भी था। सियासी जमातें, आजाद इंतखाबात और अवामुन्नास में सियासी शऊर इस मयार के मुताबिक न थे कि वो दस्तूर की कामयाबी और तहफ्फुज़ की असास बन सकते। इसके अलावा मुखालिफ ख्यालात को सुनने का हौसला और कुव्वत बर्दाश्त जमहूरियत का बुनियादी वस्त है, मगर हमारे मुल्क में हर इख्तलाफ करने वाले को मुल्क दुश्मन और रियासत का गद्दार कहा गया और हुकूमत के मामलात से इख्तलाफ करने वालों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस तरह सियासत जमहूरी रिवायात के इस्तेहकाम के बजाय इलाकाइयत परस्ती, नस्ली तासुबात और लसानी इख्तलाफा तो नजा का शिकार होकर रह गई। इन हालात में दस्तूर का कामयाब होना महाल था। नंबर 7, पार्लिमानी रूह की खिलाफ वर्जी। पार्लिमानी निज़ाम में मुमलिकत के सरबराह की हैसियत बराए नाम होती है। वो मुमलिकत के जुमला उमूर वजीर आजम की मर्जी और मंशा के मुताबिक सर अंजाम देता है, मगर हमारे मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम की इस रूह की मुसलसल खिलाफ वर्जी होती रही और सदर मुमलिकत की तरफ से हुकूमत के कामों में पे दर पे बे जा मुदाखलत होती रही। सदर और वजीर आजम के बाहमी तसादुम, सूबाई तसादुम और सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी में मरकजी हुकूमत की दखल अंदाजी से हुकूमतें पलक झपकते ही में तब्दील होकर रह जाती और मुल्क में नाफिज जमहूरी आइन मुंह तकता रह जाता। यही वजह है कि 1956 का आइन अपने बेशतर खूबियों के बावजूद मुल्क में कामयाबी से नाफिज ना हो सका। पाकिस्तान में पार्लिमानी जमहूरियत की नाकामी के असबाब। पाकिस्तान के कयाम की दास्तान मुसलमानाने बरे सगीर की साबित कदमी, कुव्वते बर्दाश्त की आजमाइश और हिंदुओं से तवील जिद्दोजहद की एक कहानी है। 14 अगस्त 1947 को ये मुमलिकत हमारे से वजूद में आई। मुस्लिम लीग ने कयाम पाकिस्तान के लिए मुजाहिदाना जिद्दोजहद की। इसके अतराफ के तौर पर मुस्लिम लीग इब्तदाई 10 सालों में मुल्की सियासत पर छाई रही। मुस्लिम लीग के सफों में मजबूत जागीरदारी ग्रुप की वजह से इस हुकूमत को अवाम में मकबूलियत न हो सकी, चुनाचा पार्लिमानी निजामी हुकूमत चल ना सका। इसकी नाकामी के मंदरजा ज़ेल असबाब हैं। नंबर 1, सियासी अबतरी। मलिक फिरोज खान नून ने सुहरवर्दी हिमायत से वजारत कायम की, मगर इस वजारत के दौरान सियासी अबतरी इंतहा को पहुंच गई। 9 मई 1958 में एक शख्स अता मोहम्मद ने डॉक्टर खान साहब को उनकी रिहाइश गाह में घुसकर गोली मार दी। सरदार अब्दुल रशीद मगरबी पाकिस्तान के वजीर आला बने, मगर वो सियासत के जीरक खिलाड़ी न थे। मशरक पाकिस्तान में मुतहदा महाज और अवामी लीग के दरमियान दस्तरकशी खतरनाक सूरत हाल अख्तियार कर गई। यहाँ तक कि असेंबली के स्पीकर शाहिद अली पर ऐवान में हमला हुआ जिससे उसकी मौत वाकई हो गई। इन हालात में मुल्क के अंदर इंतशार पैदा हो गया। नंबर दो, नाकिस मनसूबाबंदी। कौमी पॉलिसी की तश्कील मुल्की वसाइल के एतबार से दी जाती है, चुनाचा शुरू से आज तक कौमी पॉलिसी की तश्कील के सिलसिले में कोई ठोस मनसूबाबंदी न की गई। 5 साल मनसूबे बनाए गए मगर इस दौरान मनसूबों में कुम का सही इस्तेमाल न किया गया, रकम का सही इस्तेमाल न किया गया। मसलन अगर 1 अरब रुपए सनती मद में मखसूस किए गए तो इसका मुनासिब इस्तेमाल न किया गया, मुल्की पैदावार को बढ़ाने के लिए मुनासिब इकदाम न किए गए। अफराते जर के नतीजे के तौर पर रुपए की कोई कदर कीमत न रही, मौशी हालात बिगड़ गई और मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। नंबर 3, अशिया जरूरत की किल्लत। अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में जखीरा अंदोजी, नाजायज मुनाफाखोरी, स्मगलिंग को जन्म दिया। महंगाई ने आवाम का जीना दूभर कर दिया। अशिया जरूरत के नर्ख आसमान से बातें करने लगे। मोहम्मद अली बोगरा की वजारत के दौरान 30 करोड़ रुपए की मालियत का सामान स्मगल किया गया। फिरोज खान के दौरे हुकूमत में स्मगलिंग ऑर्डिनेंस मनसूख कर दिया गया। इसकी मनसूखी से चोर दरवाजे खुल गए। ख्वाजा नाजिमुद्दीन की वजारत के दौरान मुल्क में कहत पड़ गया। नंबर 4, नाकाम खारजा पॉलिसी। अंदरूनी इस्तेहकाम मुल्क की कामयाब खारजा पॉलिसी का जामिन होता है। बदकिस्मती से लियाकत अली खान की जिंदगी ही में खारजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान ने अमरीका की जानिब झुकाव जाहिर किया। रूस की हुकूमत ने वजीर आजम पाकिस्तान को दौरे की दावत दी तो लियाकत अली खान अमरीका के दौरे पर रवाना हो गए। कश्मीर का मसला खटाई में पड़ गया। भारत ने नहरी पानी बंद कर दिया तो फिरोज खान खामोश रहे। मुल्क की अफवाज की कमांडर इन चीफ हुकूमत की बेहिसी से दांत पीस रहे थे, चुनाचे उन्होंने इक्तदार पर कब्जा कर लिया। नंबर 5, कयादत का ना होना। कयाम पाकिस्तान के बाद कायद आजम 13 माह जिंदा रहे। उनकी वफात के बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पाकिस्तान का गवर्नर जनरल बनाया गया और लियाकत अली खान बदस्तूर वजीर आजम रहे। लियाकत अली खान की सरबराही में पाकिस्तान ने दाखिली और खारजी सियासत को बाअहसन तरीके पर चलाया। बदकिस्मती से लियाकत अली खान को लियाकत बाग रावलपिंडी में गोली मारकर शहीद कर दिया गया। खान साहब की शहादत से पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत में क़यादत का खला पैदा हो गया कि आइंदा 8-10 साल तक पूरा ना हो सका। बेबाक, निडर, लायक और मुदब्बिर क़यादत की अदम मौजूदगी पार्लिमानी जमहूरियत की नाकामी का सबब बनी। नंबर 6, इकतदार की कश्मकश। यूं तो हुसूल इकतदार की रस्ताकशी कायद आजम की जिंदगी में ही शुरू हो गई थी और सूबाई सतह पर दौलताना और ममदूत, अयूब खोड़ो और इलाही बख्श और डॉक्टर खान साहब और अब्दुल कयूम में ठन गई थी, मगर कायद आजम की वफात के बाद इस दौड़ में बेशुमार सियासी कायदीन शरीक हो गए। साजिशों और सियासी जोड़ तोड़ के दरवाजे खुल गए। बेउसूली और सियासी मफाद परस्ती ने मुल्क के सियासी ढांचे को हिला कर रख दिया। वजारतें दिन रात बदलने और बदलने लगीं। फिरोज खान नून के दौरे वजारत में रिपब्लिकन पार्टी और अवामी लीग के दरमियान हाथापाई हुई। चुंदरीगर की वजारत 6 हफ्ते बरकरार रह सकी। मशरकी पाकिस्तान में अवामी लीग और कर्षक सेरेमिक पार्टी में खींचातानी शुरू हो गई। इसी तरीके सियासत ने अदम इस्तेहकाम पैदा किया जो बिलाखिर मार्शल लॉ के निफाज का सबब बना। नंबर 7, सियासी जमातों की तादाद में इजाफा। पार्लिमानी जमहूरियत की कामयाबी की एक अव्वलीन शर्त 2 सियासी पार्टियों का वजूद है। लातादाद सियासी पार्टियों का वजूद अंदरूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम का बायस होता है। पाकिस्तान के क्याम के वक्त मुस्लिम लीग वाहिद सियासी जमात थी, मगर जल्द ही ये जमात अपनी इनफरादियत खो बैठी और गिरोही साजिशों के सबब अवाम में गैर मकबूल हो गई। इसके वजूद से कई पार्टियों ने जन्म लिया। मुल्क के अंदर सियासी पार्टियों की तादाद में इजाफा और इनमें बाहमी रस्साकशी का बाइस बना। नंबर 8, नौकरशाही का रोल। साबिक सदर मोहम्मद अयूब खान ने अपनी किताब जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही में नौकरशाही के किरदार की वजाहत एक मिसाल के जरिए की। वो लिखते हैं, एक सिविल मुलाजिम ने जो आजादी के वक्त वजीर मालियात बन गया था खुद को गवर्नर जनरल के ओहदे तक पहुंचा दिया। अलावा अजीम ख्वाजा गुलाम नाजिमुद्दीन की बहसियत वजीर आजम बरतरफी दरअसल नौकरशाही की ताकत का मुजाहरा था। नौकरशाही तबके ने बादशाह گروں کا کردار ادا کرنا شروع کر دیا، چنانچہ ملک میں بدنظمی اور افراتفری اور انتشار پیدا ہو گیا۔ نمبر 9، اسکندر مرزا کا آمرانہ مزاج۔ صدر اسکندر مرزا بڑے اقتدار پرست اور جاہ پسند تھے۔ ان کی آئینی حیثیت یہ تھی کہ وہ ملک کے پارلیمانی نظام حکومت کے صدر تھے۔ اس نظام حکومت میں اصل اختیارات کا غلط استعمال کرتے تھے۔ سیاستدانوں کو آپس میں لڑانا ان کی حکمت عملی کا ایک حصہ تھا۔ آمرانہ مزاج کی وجہ سے لوگ ان کے خلاف ہو گئے۔ ایوب اور یحییٰ کا دور حکومت 1958 تا 1971۔ قیام پاکستان سے لے کر 1958 تک نظر دوڑائیں تو صورتحال واضح ہوتی ہے کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ملک کی داخلی حالت ابتر، معاشی خوشحالی کا عدم استحکام، سیاسی جماعتوں کی باہمی کشمکش، سول نافرمانی جیسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ ان تمام حالات کے پیش نظر جنرل محمد ایوب خان نے 7 اکتوبر 1958 کو ملک میں پہلا مارشل لاء لگانے کی چیدہ چیدہ وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیاسی عدم استحکام۔ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی وفات کے بعد ملک کے سیاسی حالات ابتر ہونا شروع ہو گئے۔ 1956 تا 1957 کے درمیان حالات اس حد تک ابتر ہو چکے تھے کہ کوئی بھی وزارت اطمینان سے کام نہ کر سکی، جس کی بڑی وجہ سیاسی جماعتوں کی باہمی کشمکش تھی۔ سیاستدانوں میں رشوت اور بددیانتی کا مرض متعدی پیدا ہو چکا تھا۔ مشرقی پاکستان میں اقتدار کی جنگ خطرناک صورتحال اختیار کر چکی تھی۔ سیاسی حالات کی خرابی کی بنیادی وجہ جنرل غلام محمد اور صدر اسکندر مرزا کا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل تھا۔ ان حالات میں ملک کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو چکا تھا، جو مارشل لاء کا باعث بنا۔ نمبر 2، معاشی عدم استحکام۔ ملکی اقتدار پر جاگیردار طبقہ قابض تھا جو ملک کو بے دردی سے لوٹ رہا تھا۔ ملک کی اقتصادی حالت بڑی تیزی سے روبہ انحطاط ہو رہی تھی۔ باثر طبقہ حکومت کو ٹیکس ادا نہیں کرتا تھا، جس سے ملک کی ترقی بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ نمبر 3، کرپشن کا عروج۔ ملک میں اقربا پروری، چور باداری، ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ کا دور دورہ تھا۔ ملک کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ عدلیہ کی کوئی وقت نہ تھی۔ متوسط طبقہ بڑی قسم پرسی میں زندگی گزار رہا تھا۔ غنڈوں اور انتہا پسندوں کی حکومت تھی۔ ملک تباہی کی طرف جا رہا تھا۔ نمبر 4، تجارتی عدم استحکام۔ ملک کی تجارتی حالت بھی ناگفتہ تھی۔ تاجر منافع خوری میں حد سے تجاوز کر چکے تھے۔ دولت تاجروں کا ایمان بن چکی تھی۔ وہ کاروبار میں ہر حربہ استعمال کرتے جس کی مذہب اسلام اجازت نہیں دیتا، مثلاً ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی وغیرہ۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات نہ کر رہی تھی، کیونکہ وہ تو اقتدار کی جنگ میں مصروف تھی۔ نمبر 5، مسائل کی طرف عدم توجہ۔ مہاجرین کی آباد کاری، نہری پانی کا تنازع اور مسئلہ کشمیر، جو قومی مسائل کی فہرست میں انتہائی اہمیت کے حامل تھے، کسی قسم کی توجہ نہ دی گئی، جس کی وجہ سے عوام میں بے چینی اور انتشار پیدا ہو گیا۔ ملک کی مالی حالت بھی انتہائی ناگفتہ ہو چکی تھی۔ عالمی منڈی میں ہماری مصنوعات اور خام مال کی مانگ نہ تھی، اور نہ اس سلسلے میں کوئی اقدامات کیے گئے تھے جس سے ہماری مصنوعات کی نکاسی ہو سکے۔ پاکستانی کرنسی کی قدر بھی کم ہو گئی۔ اسمگلنگ کے کاروبار کی بدولت سونے کے ذخائر کم ہو رہے تھے، اور ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے لیے پاکستان مغربی بلاک کا دست نگر ہو کر رہ گیا تھا۔ زر مبادلہ کی حالت بھی قابل اطمینان نہ تھی۔ ملک کی صنعتی حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ مزدوروں اور سرمایہ داروں میں کشمکش شروع ہو گئی۔ صنعتی جھگڑے اور ہڑتالیں روزمرہ کا معمول بن گئیں۔ صنعتکاروں نے حکومت پر اپنی دولت سے دباؤ ڈالا، اور ان کی حالت دن بدن بہتر ہوتی گئی۔ اس کے برخلاف مزدوروں کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی، جس کے نتیجے میں ملک بدنظمی کا شکار ہو گیا اور عام لوگ حکومت سے بدزن ہو گئے۔ ایوب خان کا دور حکومت 7 اکتوبر 1998 کو ایک فرمان کے تحت ملک میں مارشل لاء نافذ کر دیا اور صوبائی اور مرکزی اسمبلیاں برطرف کر دیں۔ 1956 کا آئین معطل کر دیا گیا۔ فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر مقرر کیا گیا، اور 12 افراد کی کونسل مقرر کی۔ 27 اکتوبر 1958 کی شام جنرل ایوب خان نے کابینہ کے 3 فوجی ارکان جنرل اعظم چشتی، جنرل شیخ और जनरल बरकी के जरिए इस्कंदर मिर्जा पर मुस्ताफी होने के लिए दबाव डाला। चुनाचे इस्कंदर मिर्जा रातों रात मुस्ताफी होकर इंग्लिस्तान चले गए। यूं फौजी अरकान इनकलाब लाने में कामयाब हो गए। उसी रात अयूब खान सदर पाकिस्तान बन गए। मार्शल लॉ के खात्मे तक अयूब खान के पास सदर मुमलिकत, अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर और मार्शल लॉ के नाजिम आला का ओहदा बरकरार रहा। अयूबी दौर के इकदामात, तालीमी इस्लाहात। अयूब खान से पहले आबादी का बड़ा हिस्सा नाख्वानदा था और तालीम का मयार पस्त से पस्तर था। ऐसे हालात में अयूब हुकूमत ने 30 सितंबर 1958 को तालीमी कमीशन कायम किया, जिसने 26 अगस्त 1959 को एक काली तफसीली और जामे रिपोर्ट पेश की। ये रिपोर्ट 336 सफहात पर मुश्तमिल थी। इस कमीशन ने 8 माह के दौरान मुल्क के हर दो हिस्सों का दौरा किया, वहां के मखसूस मसाइल का जायजा लिया और बेहतर से बेहतर सिफारिशात पेश की। रिपोर्ट की मुख्तसरन तफसील कुछ यूं थी कि इब्तदाई तालीम के अखराजात की जिम्मेदारी वहां की मुकामी हुकूमत या सूबाई हुकूमत पर डाली जाए। उसने 2 साल डिग्री कोर्स को 3 साल डिग्री कोर्स में बदलने की सिफारिश की। तालीमी कमीशन के पेश नज़र मंदरजा ज़ेल मकासद थे। नंबर 1, इस्लामी ज़ाब्ता हयात पर मबनी एक सेहतमंद माशरे की तश्कील में मदद देने वाले वसाइल की अफजाइश करना, जिसके नतीजे में माशरे में बाहमी अखुवत, इज्जत नफ्स और एहतराम के जज्बात पैदा हों। नंबर 2, लोगों में हर किस्म का शऊर पैदा किया जाए ताकि कौमी जज्बात की परवरिश हो सके। नंबर 3, एक ऐसा सेहत अफजा माहौल पैदा करना जो फलाही ममलिकत के क्याम में आसानी पैदा कर सके। नंबर 4, मुल्क में फनी और टेक्निकल तालीम को तरक्की देना। नंबर 5, लोगों की कुदरती सलाहियतों और कुवतों की नशोनुमा का सामान फराहम करना। इनकलाबी हुकूमत की तालीमी असलाहत की बदौलत मुल्क में न सिर्फ खानदगी के तनासब में हैरत अंगेज इजाफा अमल में आया, बल्कि मयार तालीम भी बुलंद हो गया। तलबा फनी, सनती, साइंसी और टेक्निकल तालीम की तरफ बड़ी तादाद में शरीक होने लगे। अब जदीद तरीक़ा तालीम के तहत इनमें तहकीक व तजस्सुस का मादा पैदा होने लगा। कदीम फरसूदा तरीक, जिसके तहत तलबा में रट्टा लगाने की आदत पैदा हो गई थी, वो खत्म हो गई। नंबर 2, ज़रई असलाहत। अयूब हुकूमत ने मुल्क में ज़रई इनकलाब लाने के लिए 31 अक्टूबर 1958 को एक ज़रई कमीशन कायम किया। उसने 20 जनवरी 1959 को अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसकी बुनियाद पर मार्शल लॉ हुकूमत ने ज़रई असलाहत का ऐलान किया, जिसके अहम नुकात दर्ज ज़ेल हैं। नंबर 1, ज़मींदारी सिस्टम मनसूख कर दिया गया। हर किस्म की जागीरें ख़त्म कर दी गईं और मौरूसी मज़ारेन को मुस्तकिल मालकाना हुकूक अता किए गए। नंबर 2, जागीरें बिला मुआवजा बहक सरकार जब्त कर ली गईं। अलबत्ता ऐलान किया गया कि कोई शख्स अपनी मिल्कियत में 500 एकड़ से ज़्यादा बारानी ज़मीन नहीं रख सकता, ताहम बागात और चरागाहों के लिए मजीद 150 एकड़ ज़मीन रख सकता है। मुतय्यना हदूद से जायद अज़ ज़मीन हुकूमत पाकिस्तान अपनी तहवील में लेकर आम काश्तकारों को मुनासिब कीमत पर देगी, लेकिन ज़मींदारों यानी असल मालिकों को इस ज़मीन का मुआवजा किस्तों की सूरत में 25 साल तक अदा कर दिया जाएगा। नंबर 3, मज़ारेन को कानूनी कार्रवाई के बगैर बेदखल नहीं किया जा सकेगा। नंबर 4, ज़मीन की ज़ेली तकसीम और इंतशार अराजी को अज़रू कानून ख़त्म कर दिया गया। नीज इश्तमाल अराजी पर जोर दिया गया। नंबर 5, बेगार ममनू करार दे दी गई। ज़रई मजदूरों की हालत संवारने का अज़्म किया गया। काश्तकारों के लिए कर्जों की फराहमी और ज़रई पैदावार की फरोख्त के मुनासिब इंतजाम के लिए तय पाया कि इमदाद बाहमी की अंजुमनों को फरोग दिया जाएगा। नंबर 3, नज्म व नस्क के इकदाम। अयूब खान की सरबराही में फौजी हुकूमत ने मुल्क में नज्म व नस्क बेहतर बनाने, डाकुओं, राहजनों और जराइम पेशा अफराद की सरकोबी करने के लिए पुलिस और दीगर इंतजामी शोबों को फाल और मुस्तैद बनाने के इकदाम उठाए। फौजी अवामी शिकायती मराकज कायम करके दादरसी की गई और थोड़े ही अरसे में रोजमर्रा जराइम में नुमाया कमी वाक़ हो गई। नंबर 4, मुआशी इस्तेहकाम। मार्शल लॉ हुकूमत ने वजारत खजाना का कलमदान आलमी बैंक के माहिर मुआशियात मोहम्मद शुएब के सुपुर्द किया, जिन्होंने दरामद बरामद पर मौसर कंट्रोल किया और बोनस स्कीम का इजरा किया। इससे मुल्क की तजारत में बरामदात की हौसला अफजाई से जर मुबादला की खासी बचत हुई और जरूरियात जिंदगी की किल्लत को दूर करने के लिए बोनस वाउचर पर दरामद बढ़ गई। सनअत व हिरफत की तरक्की के लिए खुले लाइसेंस जारी किए गए। अफराद के सदबाब के लिए प्राइस बॉन्ड की स्कीम शुरू की गई, जो बहुत कामयाब साबित हुई। इन इकदाम से मुल्की मीशत में न सिर्फ इस्तेहकाम पैदा हुआ, बल्कि अवाम और ताजर पेशा लोग खुशहाली से हमकिनार हुए। नंबर 5, दारुलहुकूमत की तब्दीली। जनवरी 1959 में मार्शल लॉ हुकूमत ने दिफाई नुक्ता निगाह और कराची की आबो हवा के पेश नजर फैसला किया कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत कराची से मुंतकिल कर दिया जाए। चुनाचा वफाकी मरकज का एक कमीशन मुकर्रर किया गया, जिसकी सिफारिश पर जून 1959 में रावलपिंडी के करीब पहाड़ के दामन में दारुल हुकूमत के लिए जगह मुंतखब की गई, जहां इस्लामाबाद का शहर आबाद किया गया। आर्जी तौर पर वफाकी मरकज के जुमला दफातर रावलपिंडी मुंतकिल कर दिए गए, और जो जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तामीर का काम मुकम्मल होता गया, मरकजी दफातर इस्लामाबाद मुंतकिल होते रहे। नंबर 6, बुनियादी जमहूरियत का निजाम। अयूब हुकूमत ने 1 नवंबर 1959 से लोकल गवर्नमेंट का एक नया निज़ाम कायम किया, जो बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम कहलाया। इसके तहत देहाती इलाकों में यूनियन कौंसिल, तहसील कौंसिल, शहरों और अजला में डिस्ट्रिक्ट कौंसिल और इन सब के ऊपर डिविजनल कौंसिल कायम की, जिनके अरकान हक रायदही की बुनियाद पर आम इंतखाबात के जरिए मुंतखब किए गए। फिर इन अरकान में से हर तहसील की तहसील कौंसिल के लिए और हर डिवीजन की डिवीजनल कौंसिल के लिए मेंबरान मुंतखब किए गए। इन इदारों को मुकामी नौयत के म्यूनिसिपल फराइज सौंपे गए। हुकूमत के अफसरान बुनियादी जमहूरियतों के काम की निगरानी करते। बुनियादी जमहूरियतों को टैक्स लगाने का हक था। ये मकामी झगड़ों का तस्वीर भी करती थी। निकाह के कागजात तैयार कराना, उनका रिकॉर्ड रखना और औरत को जायज हकूक का तहफ्फुज़ उनके फराइज में शामिल था। बुनियादी जमहूरियतों के अरकान को सूबाई असम्बलियों, मरकजी असम्बली और सदर ममलिकत के इंतखाब के लिए इंतखाबी इदारे की हैसियत दी गई। चुनाचा फरवरी 1960 में बुनियादी जमहूरियत के अरकान ने ही अयूब खान को 5 साल के लिए पाकिस्तान का सदर मुंतखब किया और उन्हें आइन बनाने का इख्तियार दिया। बुनियादी जमहूरियत के निज़ाम के तहत देहात की मुतअद्दिद तरक्याती स्कीमें पाया तकमील तक पहुंची, लेकिन अफादियत के साथ साथ इस निज़ाम में मुतअद्दिद खामियां भी थीं। मोहम्मद अयूब खान ने बुनियादी जमहूरियतों को इंतखाबी इदारे की हैसियत देकर जमहूरियत का गला घोटने की कोशिश की। उससे ये निज़ाम न सिर्फ अपनी अफादियत खो बैठा, बल्कि बदनाम होकर रह गया। बुनियादी जमहूरियत का निज़ाम और सदारती इंतखाबात। अक्टूबर 1958 में मुल्क में जब मार्शल लॉ का निफाज अमल में आया, तो मुल्की मामलात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। इसमें देही तरक्की भी शामिल थी। देही तरक्की के काम की अहमियत तो पहले ही वाजह थी, लिहाजा पहले पहल देही तरक्की और मदद का जो प्रोग्राम बनाया गया, उसकी खामियों का जायजा लेकर उसका नाम भी तब्दील कर दिया गया। इस नई सोच में नुक्ता इनकलाब ये था कि देही माशरे में क्यादत बाहर से लाकर थोपी नहीं जा सकती थी, इसलिए जो भी क्यादत उभरे वो खुद देहात से निचली सतह से उभरनी चाहिए। उसके साथ ही ये तस्लीम किया गया कि देही तरक्याती काम को इदारती वजह पर मुतशक्कल करना चाहिए, वरना ये काम ना तो बरकरार रह सकेगा और ना ही दिलों में उमंग पैदा कर सकेगा। चुनाचे 26 अक्टूबर 1959 को बुनियादी जमहूरियतों का हुक्म जारी कर दिया गया। कौमी क्यादत की आला सतहों और देहात के दरमियान जो गुमशुदा कड़ी थी, वो बुनियादी जमहूरियत के जरिए मिलाप की हैसियत इख्तियार कर गई। इस निज़ाम को इस तरह मुरतब किया गया कि इन इदारों के जरिए देहात की ज़रूरतें और ख्वाहिशात बैरूनी आला सतहों तक फौरन पहुँच सकें और इंतजामी ढांचे के आला असहाबेकार की सोच और एहसास इसी जरिए से वापस होकर अहले देहात तक पहुँच जाएँ, और इसके साथ ही माली रकूमात भी बहुम पहुँचा दी जाएँ। बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम 5 मंजिलों पर मुहित था। सदारती इंतखाबात। जब पार्लिमानी निज़ाम में हुकूमत नाकाम हो गई, तो उसके बाद सदर अयूब खान ने मुल्क में सदारती तर्ज हुकूमत को रिवाज दिया और इस मकसद के खातिर उन्होंने बुनियादी जमहूरियतों का निज़ाम नाफिज किया ताकि लोग इस निज़ाम के जरिए अपने मसाइल को बतौर बेहतर तौर पर हल कर सकें। इसी निज़ाम के तहत 1969 में मशरक़ी पाकिस्तान में हक़ राय दही बालगान की बुनियाद पर 80,000 अराकीन का इंतखाब अमल में लाया गया। इसी तर्ज निज़ाम में दोनों सूबों को बराबर नुमाइंदगी दी गई थी। 14 फरवरी 1960 को इन्हीं अरकान में से 96.95% अरकान ने एतमाद का वोट देकर सदर अयूब खान को 5 साल के लिए मुल्क का सदर चुन दिया। 17 फरवरी 1960 को फील्ड मार्शल अयूब खान ने सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हलफ उठाया और नए आइन की तैयारी के लिए आइनी कमीशन तश्कील दिया। सदर ने काबीना को असर नौ मुनज़म किया और 11 अफराद को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। ये पेज नंबर 54 है। पार्ट नंबर 5 यहाँ मुकम्मल होता है।